लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं, ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, ईरान और इसराइल के बीच घातक सैन्य टकराव अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल व हवाई हमले किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने इसराइल और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव और दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर किए जा रहे मिसाइल व हवाई हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पिछले कई वर्षों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी कर रही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान में अपकेंद्रण यंत्र का उत्पादन करने वाले दो केंद्रों को विशाल क्षति पहुंचने की जानकारी मिली है। इनका उपयोग यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी परमाणु संयंत्रों पर हमले की स्थिति में विकिरण रिसाव के खतरों के प्रति अपनी चेतावनी जारी की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने ईरान और इसराइल के बीच भड़के टकराव की पृष्ठभूमि में सुरक्षा परिषद की बैठक में आगाह किया है कि ये दुनिया के सामने एक बहुत अहम क्षण है। इससे न केवल राष्ट्रों बल्कि मानवता का भी भविष्य तय होगा। इसराइल ने 13 जून को ईरान में परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले शुरू किए, जिसके बाद ईरान ने भी सिलसिलेवार मिसाइलों और ड्रोन के जरिए जवाबी कार्रवाई की है। महासचिव गुटेरेश ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में चेतावनी दी कि हम एक बड़े संकट की ओर टहलते हुए नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वहां पहुंचने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षों से आग्रह किया कि शांति को एक अवसर दिया जाना होगा और टकराव को और अधिक भड़कने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान में परमाणु केंद्रों पर इजरायली हमलों से परमाणु सुरक्षा को गहरी क्षति पहुंची है। महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने बताया कि अब तक आम जनता को प्रभावित करने वाले विकिरण का रिसाव नहीं हुआ है, लेकिन ये होने का खतरा है।
गाजा में फिलिस्तीनी आबादी पर मंडराते भूखमरी की जोखिम के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता कर्मियों ने खाद्य सहायता वितरण केंद्रों पर घातक हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। गाजा में पिछले 100 दिनों से अधिक समय से ईंधन की आपूर्ति पर पूरी तरह पाबंदी है। मौजूदा भंडार खत्म होने के नजदीक में है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है कि ईंधन के अभाव में अति महत्वपूर्ण सेवाएं पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
गाजा में फलस्तीनी जनता दोहरी त्रासदी झेल रही है। एक तरफ गंभीर भूख संकट और दूसरी ओर खाद्य वितरण केंद्रों पर जानलेवा हिंसा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया है कि बीते कुछ हफ्तों में 400 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत तब हुई जब वे भोजन लेने के लिए केंद्रों पर जमा हुए थे। 27 मई से अमेरिका और इसराइल की एक साझा पहल के तहत दक्षिणी गाजा में भोजन वितरण शुरू किया गया है, लेकिन इसमें यूएन एजेंसियां शामिल नहीं है। इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की घटनाएं हुई है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हताहत हुए लोगों से इसराइली सेना या वितरण केंद्रों पर कर्मचारियों को किसी तरह का कोई खतरा था। संगठन ने ध्यान दिलाया है कि ऐसी घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस बीच यूएन मानवतावादी कार्यालय ने बताया है कि यदि गाजा में तुरंत ईंधन की आपूर्ति बहाल नहीं हुई या उसके भंडार तक पहुँच नहीं मिली तो स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर गंभीर असर होगा।
पिछले एक दशक के दौरान अफगानिस्तान में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भूमिका, निर्णय निर्धारक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी घटती हिस्सेदारी पर चिंता जताई गई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये स्थिति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव, उन पर थोपी गई पाबंदियों पर जानकारी दी गई है और क्षोभ व्यक्त किया गया है कि मानव विकास के वैश्विक मानकों पर अफगान महिलाएं पिछड़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
यूएन वुमेन ने अफगानिस्तान की महिलाओं की स्थिति पर एक नया लैंगिक सूचकांक जारी किया है, जिसमें 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लैंगिक असमानता और महिला अधिकारों के लिए गंभीर तस्वीर को उकेरा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय और स्थानीय निर्णय निर्धारण संस्थानों में अफगान महिलाओं की भागीदारी लगभग शून्य हो चुकी है। 78% महिलाएं शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण से वंचित हैं। ये पुरुषों की तुलना में 4 गुना अधिक है। दिसंबर 2024 में माध्यमिक शिक्षा पर लगे प्रतिबंध के कारण लड़कियों की स्कूलों में उपस्थिति शून्य होने की आशंका है। यूएन महिला संस्था की अधिकारी सोफिया कॉलटॉप ने कहा कि अफगान महिलाओं और लड़कियों पर अधिकारों, गरिमा और अस्तित्व के स्तर पर अभूतपूर्व हमले हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लैंगिक असमानता तालिबान से पहले भी मौजूद थी और ये एक गहरे संस्थागत भेदभाव का हिस्सा है जिसने महिलाओं को सदैव आगे बढ़ने से रोका है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि केवल 24% महिलाएं ही श्रम बल का हिस्सा हैं, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 79% है। महिलाएं कम वेतन और असुरक्षित रोजगारों तक ही सीमित हैं, साथ ही घरेलू कार्य का बोझ भी उन्हीं के कंधों पर है।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी जारी की गई है कि यदि समय रहते मानवीय सहायता प्रयास नहीं किए गए तो सूडान, फिलिस्तीन, दक्षिण सूडान, हेती और माली में आगामी महीनों में भयावह भूख संकट, भुखमरी और मौतों का सामना करना पड़ सकता है। 16 जून सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार ये 5 भूख से सर्वाधिक प्रभावित इलाके हैं, जहां हिंसक टकराव, विस्थापन को रोकने और पूर्ण स्तर पर राहत अभियान को तुरंत शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
ये रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जारी की है, जहां भूख संकट से सर्वाधिक प्रभावित 5 देशों में हालात पर चेतावनी जारी की गई है। इन्हें हंगर हॉटस्पॉट्स का नाम दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सूडान, फलस्तीन, दक्षिण सूडान, हेती और माली जैसे देशों में अगर समय पर मदद नहीं पहुंची, तो आने वाले महीनों में भुखमरी और मौतों से भीषण बर्बादी हो सकती है। ये वो इलाके हैं जहां युद्ध, हिंसा, विस्थापन और प्राकृतिक आपदाओं ने जिंदगी को एक असहनीय त्रासदी में बदल दिया है। सूडान में लगभग 2.5 करोड़ लोग गंभीर भूख से जूझ रहे हैं। वहीं गाजा में 21 लाख लोग संकट में हैं। दक्षिण सूडान में 77 लाख यानी देश की करीब 57% आबादी खाद्य असुरक्षा की चपेट में है। हेती में आपराधिक गुटों की हिंसा ने राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस को भी जकड़ लिया है, जहां 8,000 से अधिक आंतरिक विस्थापित लोग खतरनाक भुखमरी का सामना कर रहे हैं। माली में अनाज महंगा है, हिंसा बढ़ रही है और 2,500 जिंदगियां खतरे में है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
Me.
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में येसु के पवित्रतम हृदय महापर्व पर पुरोहिताभिषेक के अवसर पर शुक्रवार को संत पापा लियो 14वें ने कहा कि येसु के पवित्रतम हृदय पर चिंतन हमसे उनके देह धारण, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य पर मनन का आग्रह करता है। इस महापर्व पर प्रस्तावित धर्मग्रंथ पाठों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा कि आज के प्रथम पाठ में नबी एजेकियल ने ईश्वर को एक चरवाहे के रूप में वर्णित किया है जो अपने झुंड की देखभाल करता है। वह खोए हुए लोगों को खोजता, घायलों को बांधता और कमजोर एवं बीमारों को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार वह हमें याद दिलाता है कि विशाल और विनाशकारी संघर्षों के इस युग में ईश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। संत पापा ने कहा कि हमें खुद को ईश्वरीय प्रेम का आलिंगन करने और आकार देने के लिए बुलाया जाता है और यह महसूस करने के लिए कि ईश्वर की दृष्टि में किसी भी तरह के विभाजन और घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। रोमियो को लिखे संत पॉल के पत्र के 5वें अध्याय से लिए दूसरे पाठ पर मनन करते हुए संत पापा ने कहा कि संत पॉल हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ पुनर्मिलन तब किया जब हम कमजोर और पापी थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा हमें प्रतिदिन परिवर्तन के मार्ग पर चलने तथा हमारे हृदयों में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति के हाथों में स्वतः को सौंपने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हमारी आशा इस ज्ञान पर आधारित है कि प्रभु ईश्वर कभी भी हमारा परित्याग नहीं करते, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पवित्र यूखरिस्त को अपने जीवन का केंद्र बनाने का आह्वान कर संत पापा ने कहा कि जैसा कि द्वितीय वैटिकन महासभा हमें सिखाती है, यूखरिस्त ख्रिस्ती जीवन का स्रोत और शिखर है। इसी प्रकार उन्होंने कहा, संस्कारों के फलदायी स्वागत के माध्यम से और विशेष रूप से संस्कारात्मक प्रायश्चित के लगातार अभ्यास द्वारा और साथ ही सतत प्रार्थना, ईश वचन पर ध्यान और दान के अभ्यास द्वारा हम अपने हृदयों को दया सागर पिता के हृदय के और भी करीब लाते हैं। फिर सुसमाचार पाठ पर चिंतन कर संत पापा ने कहा कि पुरोहितों को भले गरेड़िए येसु के सदृश ही गरेड़िए बनने के लिए बुलाया गया है ताकि वे एक को भी न खोएं बल्कि हरेक की तलाश कर उदार प्रेम की मिसाल अपने भाइयों के बीच रखें। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को पुरोहितों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैठक के प्रतिभागियों को दिए संदेश में पुरोहितीय प्रशिक्षण और जीवन में भ्रातृत्व के महत्व पर बल दिया तथा पुरोहितों को स्मरण दिलाया कि वे कभी भी अकेले नहीं हैं। जयंती वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में रोम के कोंचिलियाचियोने रंग भवन में 25 से 27 तक आनंदित याजकों, मैंने तुम्हें मित्र कहा है शीर्षक से आयोजित याजक वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में लगभग 1,700 पुरोहितों, प्रशिक्षकों और गुरुकुल छात्रों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय बैठक में उपस्थित लोगों को दिए संदेश में संत पापा लियो ने इस बात पर जोर दिया कि येसु के शब्द मैंने तुम्हें मित्र कहा है सिर्फ एक अच्छा कथन नहीं है बल्कि वे पुरोहितिक प्रेरिताई को समझने की एक सच्ची कुंजी है। पुरोहितीय प्रशिक्षण पर विचार करते हुए संत पापा लियो ने तीन अंतर्दृष्टियां प्रस्तुत की। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि पुरोहितीय प्रशिक्षण संबंधों का मार्ग है और इसका अर्थ केवल कौशल में नहीं बल्कि संबंधों में परिलक्षित होता है। दूसरी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए संत पापा लियो ने भ्रातृत्व भाव को रेखांकित किया और कहा कि भाईचारा पुरोहितीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तृतीय संत पापा लियो ने तर्क दिया कि पुरोहितों के प्रशिक्षण का मतलब है ऐसे लोगों का प्रशिक्षण जो प्रेम पूर्वक जीवन यापन करने, एक दूसरे को सुनने, प्रार्थना करने और सेवा करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हमें प्रशिक्षकों को तैयार करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैथोलिक गुरुकुल अपने आप में एक महान अनुस्मारक है कि पुरोहितों का प्रशिक्षण अकेले नहीं बल्कि समुदाय में रहकर ही हो सकता है। संत पापा ने पुरोहितों को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि वे स्वतः को कभी भी अकेला न समझें, क्योंकि ईश्वर सदैव उनके साथ हैं और अपनी प्रार्थनाओं द्वारा कलीसिया के परमाध्यक्ष भी निरंतर उनके समीप रहते हैं। उन्होंने कहा, हमेशा ईश्वर की कृपा और मेरी निकटता पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम वास्तव में दुनिया में आशा की आवाज बन सकते हैं। विश्व में बढ़ती अशांति और हथियारों के अति उपयोग पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए संत पापा लियो चौदहवें ने राष्ट्राध्यक्षों का आह्वान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की बहाली और विश्व शांति स्थापना का वे हर संभव प्रयास करें। गुरुवार को प्रकाशित अपने पहले ट्वीट संदेश में संत पापा लियो चौदहवें ने लिखा, यह अत्यंत निराशाजनक है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय कानून की ताकत अब बाध्यकारी नहीं लगती, बल्कि इसकी जगह दूसरों पर हावी होने के कथित अधिकार ने ले ली है। यह मानवता और राष्ट्रों के नेताओं के लिए अयोग्य ही नहीं अपितु एक शर्मनाक तथ्य है। इसी प्रकार गुरुवार को ही एक दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा लियो चौदहवें ने प्रश्न किया, सदियों के इतिहास के बाद हम कैसे मान सकते हैं कि युद्ध की घटनाएं शांति लाती हैं और उन लोगों के खिलाफ नहीं जाती जो युद्ध करते हैं। बिना सामंजस्य और आम भलाई से प्रेरित साझा दृष्टिकोण से संबंधित कल की नींव रखने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बच्चों और सशस्त्र संघर्षों पर खुली बहस में मॉन्सिन्योर मार्को फोर्मिका ने कहा कि परम धर्मपीठ सशस्त्र संघर्ष के पुनः उभरने और बल प्रयोग की बढ़ती स्वीकार्यता से अत्यधिक चिंतित है। मान्यवर फोर्मिका ने कहा कि सशस्त्र संघर्ष की ये गंभीर घटनाएं समाज के सबसे कमजोर सदस्यों, विशेषकर बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध की क्रूरता के कारण बच्चों का जीवन प्रायः क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा उनकी गरिमा और भविष्य को खतरे में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि निर्दोष लोगों की सुरक्षा को सभी राजनैतिक, सैन्य और रणनीतिक विचारों से ऊपर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा बातचीत, कूटनीति और शांति के मार्ग पर फिर से प्रतिबद्ध होने की तत्काल आवश्यकता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।
कदम दर कदम पोप लियो चौदहवें दुनिया को अपना परिचय देते हैं।
आप सबको शांति मिले
और उसी क्षण से उनके कदम हमारे भी बन गए हैं।
मैं आपके पास एक भाई के रूप में आया हूं, जो आपके विश्वास और आपके आनंद का सेवक बनना चाहता है।
संत पेत्रुस की दान राशि में अपने योगदान के साथ संत पिता के कदमों का ठोस रूप से समर्थन करें। आप उन्हें दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करेंगे और जरूरतमंद भाइयों और बहनों की सहायता में हाथ बटाएंगे।
भाइयों, बहनों, यह प्रेम का समय है।
पोप लियो चौदहवें के कदमों का समर्थन करें। संत पेत्रुस के अनुदान राशि में योगदान दें। संत पेत्रो.वा के साइट www.obolo पर जरूर जाएं।